वास्तविकता में जिए। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसको हम प्राप्त करें, और उस वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमने ये समझा कि जब तक हमारी दृष्टि निर्मल नहीं होगी तब तक वो वास्तविक स्वरूप हमें स्वयं दिखाई नहीं पड़ेगा, और जब तक वास्तविक स्वरूप हमें हमारा और पर पदार्थों का स्पष्ट वास्तविक स्वरूप न दिखाई पड़े तब तक हम कैसे अपनी दृष्टि को निर्मल कर पाएंगे। और हमने ये भी समझा था कि जब हमें अपने आत्मस्वरूप और बाह्य जगत के स्वरूप की वास्तविकता मालूम पड़ती है तब हमारी दृष्टि निर्मल होती है, या ये समझें कि हमारी दृष्टि निर्मल जैसे जैसे होती जाती है वैसे वैसे हमें संसार शरीर भोगों की वास्तविकता और अपने आत्मस्वरूप की वास्तविकता मालूम पड़ती जाती है। और इस सब प्रयत्न के लिए ये तो पता नहीं कब हमारी दृष्टि निर्मल होगी और कब हमें संसार की वास्तविकता का बोध होगा, ये तो बहुत सडन होने वाली चीज है, ऑल ऑफ सडन कभी भी जो है हो सकता है, लेकिन ये कब होगा और इसके लिए मुझे प्रयत्न करना पड़ेगा, तो ये कभी भी हो सकता है और बिना प्रयत्न के हो सकता है, बहुत अनायास होने वाली चीज है। जस्ट लाइक स्पार्किंग, जैसे कि अचानक स्पार्क हुआ और पूरे अंधेरे में हमें नहीं समझ में आ रहा था कि कहां कौन सी चीज रखी है और मुझे कैसे प्राप्त होगी, और अचानक स्पार्क हुआ और रोशनी हो गई और फिर गायब भी हो गई, लेकिन अब मालूम पड़ गया है कि कमरे में कौन सी चीज कहां रखी है और कैसी है। बस ऐसे क्षण भर को उपशम सम्यक दर्शन होता है अंतर्मूर्त के लिए। सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि को अगर होगा तो उपशम सम्यक दर्शन होगा, स्पार्किंग की तरह होता है और समाप्त हो जाता है। उस बीच में अगर वो चाहे तो अपने सम्यक दर्शन को शय उपशम सम्यक दर्शन बना के और बहुत बहुत समय तक अपनी दृष्टि को निर्मल बनाए रह सकता है, वरना तो सबसे पहले दृष्टि निर्मल होती हो फिर अंधेरा फिर पुनः छा जाता है। लेकिन मजा यह है कि एक बार अगर हमें वास्तविकता का बोध हो जाए तो फिर हमारी दृष्टि ढक जाने के बाद भी दिट्ठी मग्गम कहते हैं, जिसने एक बार मार्ग देख लिया है फिर उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता। तो हमें बिना प्रयास के ये होगा, और इसके साथ साथ कब होगा ये कहा नहीं जा सकता, तो हम करें क्या। तो हमने ये भी विचार किया है कि हम तो बाह्य प्रयत्न इतना ही कर सकते हैं कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठ जाएंगे, उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखेंगे और फिर निश्चिंत हो जाएंगे कि जब होना होगा और होगा, और हमें अब कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, बस जरा सा प्रयत्न इतना तो करना पड़ेगा कि मुझे सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठना पड़ेगा, आंख खोल के बैठना पड़ेगा। कब निर्मल होगी दृष्टि कहा नहीं जा सकता, आंख तो खोलना पड़ेगी। जैसे एक व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठा हुआ था और आंख नीचे हुए बैठा हुआ था, और किसी ने कहा कि क्यों भैया क्या बात है, चलना नहीं है क्या? बोलता चलना भी है लेकिन सूरज की रोशनी में चलना है। तो उन्होंने कहा सूरज की रोशनी हो जाएगी तुम्हें पता कैसे लगेगा आंख नीचे बैठे हो? बोले मैंने ये तय किया है कि चलूंगा तभी और आंख तभी खोलूंगा जब सूरज की रोशनी निकल आएगी। अब बताइए अगर ऐसे बुद्धू आदमी को कौन समझाए कि आंख खोलो तब तो मालूम पड़ेगा कि सूरज की रोशनी हुई कि नहीं, तब तो तुम चलना शुरू करो। नहीं, हम आंख नीचे बैठे रहेंगे और जब सूरज निकलेगा तब आंख खोलेंगे और तब चलना शुरू करें। नहीं, इतना प्रयास तो करना पड़ेगा कि आंख खोल के बैठना पड़ेगा। तो इतना प्रयास तो है कि हम आंख खोल के बैठेंगे, मतलब सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते रहेंगे। इसके बाद हमारे हाथ में नहीं है, इसके बाद तो जब होगा ऑल ऑफ सडन कभी भी हो सकता है, तो हमारी तैयारी इतनी है। ये हमने पिछले दिनों इस बात पे बहुत विचार कर लिया है, और हमने जो मुश्किलें इस बीच में आ सकती हैं उनको भी थोड़ा सा आसान करने की कोशिश की है। मुश्किलें यही हैं कि पता नहीं सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठे बैठे भी और अहंकार जागृत हो जाए। कल ही इस मुश्किल पे हम विचार कर रहे थे कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में हमारा ज्ञान भी बढ़ सकता है, बढ़ता ही है, बट नेचुरल। जब हम किसी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे तो हमारा ज्ञान तो बढ़ेगी, हमारी जय जयकार होना शुरू होगी, पूजा भी मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति चूंकि श्रद्धा रख रहा हूं, इसलिए मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए हैं, और इन चीजों की प्राप्ति से मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया है कि जो चीज मैंने पाई है वो बहुत बड़ी चीज है, और ये छोटी मोटी चीजें मुझे अब अहंकार नहीं दिला पाएंगी। असल में किसी के पास बहुत बड़ी चीज हो तो छोटी छोटी चीजें मिलने से फिर उसको अहंकार नहीं आता, और जिसके पास कुछ भी नहीं, जो रेपुटेटेड पर्सन हो वो अगर किसी रेपुटेटेड पर्सन के पास में जाए तो उनको उससे कोई अपेक्षा नहीं होती, जिनकी अपनी कोई रेपुटेशन नहीं होती वो रेपुटेटेड पर्सनैलिटी के पास जाके अपनी रेपुटेशन बनाना चाहते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं थोड़ा सा कठिन हो जाता हूं कभी कभी, बहुत ऐसे बोल देता हूं। जो सम्मानित व्यक्ति है वो किसी सम्मानित व्यक्ति के पास जाके अतिरिक्त सम्मान की आकांक्षा नहीं रखेगा, लेकिन जिसका कहीं कोई सम्मान नहीं है वो सम्मानित व्यक्ति के पास इसलिए जाएगा कि उसे सम्मान मिलने लगे। अब आया समझ में आपके? और सम्मानित कौन है यहां पर? सच्चे देवगुरु शारी से अधिक सम्मानित कौन है? कहीं ऐसा ना हो कि उनके चरणों में जाकर के भी हम अपने सम्मान के लिए कोशिश करने लगे। अगर हमें अपना आत्म सम्मान विस्मृत हो गया होगा तो जरूर हम अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में जाकर के और दुनिया भर के सम्मान पाने की आकांक्षा रखेंगे। आज भी मैं देखता हूं कि हम अधिकांश लोग सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में अगर हमें सम्मान मिलता है तो हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के पास जाते हैं, और अगर हमें सम्मान मिलना बंद हो जाता है तो शायद हम उनके पास जाना भी बंद कर देते। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है तो हम इस मुश्किल को भी आसान करेंगे। ये हमारी अपनी मुश्किल है, ये हमारा अपना संस्कार है, क्या करें। लेकिन हमारा आत्म सम्मान अगर एक बार हमें मालूम पड़ जाए कि हम आत्मा में बहुत समृद्ध हैं, मुझे और किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है, मुझे सबसे बड़ा सम्मान ये मिल गया है कि मुझे सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण मिल गई, इससे बड़ा संसार में और कोई सम्मान नहीं हो सकता, तो हम शायद फिर ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का और शरीर का और अपनी तपस्या का और अपने सौंदर्य का और जितने भी प्रकार हो सकते हैं अहंकार के, उन सब के निमित्त मिलने पर भी मेरे मन में कोई अहंकार नहीं आएगा। वास्तविकता का बोध होने के बाद तो जब कोई व्यक्ति इस तरह के सम्मान चाहने लगता है तो उसे अपने से ज्यादा कोई और मूर्ख नहीं मालूम पड़ता। वास्तविकता का बोध होना चाहिए, और जब तक वास्तविकता नहीं मालूम पड़ती है तब तक तो हम भ्रम में और बहुत अपने जीवन को तहस नहस करते रहते हैं। तहस नहस शब्द कह रहा हूं। कभी अपन को लगता है कि हम अपने जीवन को अपने हाथ से मिटा रहे हैं? शायद कभी नहीं लगता, कोई और मिटा रहा है हमारे जीवन को। ये पंचम काल में हम पैदा हुए इसलिए काल मिटा रहा है, इस जगह पैदा हुए हैं, इससे छोटे से गांव में बंबई में होते तो शायद जीवन बहुत अच्छा होता, ये शायद जगह हमको ऐसी मिल गई है इसलिए हमारा जीवन मिट रहा है, या ये फैमिली जिसको मैं बिलोंग करता हूं वो अच्छी नहीं मिली मुझे। ये जो इस तरह का सोच है उससे मालूम पड़ता है कि हमें वास्तविकता नहीं मालूम जीवन की। हाँ ऐसा है, अगर आप देख लीजिएगा अपने भीतर झांक करके कि अगर ऐसा सोच है, ऐसा विचार हमारे भीतर आ जाता है तो इसका मतलब है कि अभी हमको वास्तविकता नहीं मालूम। अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर कह रहे हैं कि हमको संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता मालूम पड़ गई। मालूम पड़ गई होती को तो कहीं भी रह करके और हमारे अंदर ये विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं भी जाओ अल्टीमेटली मिलना उससे दुखी है, क्योंकि उसका स्वभाव है संसार दुखमय है, शरीर अपवित्र है। मेरे को और अच्छा मिलता तो पवित्र हो जाता है, ऐसा संभव ही नहीं था। स्वभाव तो असुचौ काए, मुझे ये भोग विलास की सामग्री और अच्छी मिलती होती तो शायद मेरा जीवन अच्छा होता। नहीं, इस भोग विलास की सामग्री के मिलने से कभी किसी का जीवन अच्छा हुआ ही नहीं, चाहे मैं बंबई में पैदा हूं, चाहे मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हूं, चाहे मैं एक बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करूं, या कि चाहे मैं एक गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ हूं, ये जो चीज है ये वास्तविकता का बोध होने पर ही आती है भैया। अभी अगर हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं कि कहीं किसी और जगह होता, किसी और चीजों के बीच में होता तो ज्यादा सुखी होता, तो समझना अभी सुख का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ। एक व्यक्ति रास्ते से चला जाता था, खरीद के लाया था वो कांच का सामान, बहुत बढ़िया बढ़िया फानूस थे कांच के और बहुत बढ़िया क्रॉकरी थी कांच की, और सब संभाले हुए चला आ रहा था, और अचानक जो है टक्कर लगती है और सारा सामान नीचे गिर जाता है और सब टूट जाता है। सब टूट जाता है तो एक क्षण तो वो देखता है टूटे सामान को, फिर जोर से ठहाका लगा के हंसता है। तो लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और उसको देखते हैं गौर से, तो वो मालूम क्या कहता है कि आर यू नॉट सी एनी फुलिश बिफोर मी, आपने आपने क्या ऐसे देख रहे हैं, क्या मुझसे पहले आपने और किसी मूर्ख को नहीं देखा जो मुझे इतने गौर से देख रहा है, जो अपने कांच के सामान को गिरा के भी बहुत जोर से ठहाका लगा के हंस रहा है, क्या आपने मुझसे ज्यादा मूर्ख आदमी और पहले नहीं देखा। लोग बड़े चकित हैं कि कोई अपना सारा सामान टूट जाने के बाद भी हंस सकता है। वो कह रहा है कि हाँ हंस सकता है और दुनिया हंसने वाले को मूर्ख मानेगी, लेकिन मैं जानता हूं कि इस समय मैं अपनी पुरानी मूर्खता पे हंस रहा हूं कि अभी तक मैं ये सोचता था कि ये कांच का सामान जब मैं दुकान से खरीदता था तो सोचता था कि शायद मेरे जिंदा रहने से ज्यादा दिन तक ये कांच का सामान जिंदा रहेगा, ये कांच का सामान कभी नहीं टूटेगा। मैं ऐसे भ्रम में बड़े संभाल के लेके आ रहा था, जब भी धक्का लगा और नीचे टूट गया मेरे देखते देखते, तब मुझे अपनी उस मूर्खता पे हंसी आ रही है और तुमने मुझ जैसा मूर्ख के पहले नहीं देखा। जिस दिन भी हमें वास्तविकता का बोध होता है तब हमें दूसरे की मूर्खता पर नहीं अपनी मूर्खता पर हंसी आनी चाहिए। और जब वो घर पहुंचता है तो लोग उसके टूटे सामान को देख करके कहते हैं कि क्यों टूट गया, तो बोलता कि ये मत पूछो कि टूट गया, ये मत पूछो कि कितनी देर तक साबित रहा, आधे रास्ते तक साबित रहा, ये क्यों नहीं पूछ रहा हो, वहां जाके गिरा था और टूट गया है ये क्यों पूछ रहे हो, आज मुझे मालूम पड़ा कि कांच की तो नजाकत इसी में है कि वो गिरे और टूट जाए, नहीं तो कांच काएगा, पत्थर ना हो जाए, पत्थर गिरने पर नहीं टूटता, कांच गिरने से टूट ही जाता है, ये कांच की अपनी तासीर है, ये आज मुझे मालूम पड़ गया। मैं बहुत बड़े भ्रम में था कि मैं कांच का सामान लेके आया हूं और ये बहुत दिन तक नहीं टूटेगा, शायद कभी नहीं टूटेगा, मुझे ऐसा भ्रम था क्योंकि मैंने खरीदा, मैंने उसको गारंटी के साथ खरीदा है कि यह टूटेगा नहीं। ऐसा अगर मुझे संसार की एक एक चीज का भरोसा हो जाए तो भैया फिर क्या होगा मुझे बताइएगा, मेरे व्यवहार में परिवर्तन आए बिना नहीं रहेगा। हम बच्चों को तो समझा देते हैं जब उनका फुग्गा फूट जाता है तो हम समझा देते हैं कि फुग्गा फूटने के लिए ही था, तुम हंसो फूटने से, लेकिन जब मकान की एक ईंट गिरती है तो उदास हो जाते हैं, और उस समय अगर उस समय हमें उदास देख करके और बेटा कहे कि पापा क्या हुआ आपका फुग्गा फूट गया क्या, तो जरा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हमारी कोई चीज में टूट फूट होती है तो फिर हम बच्चों के फुग्गे की तरह हंस नहीं पाते हैं कि दूसरा ले लेंगे, ये तो चीज ही ऐसी है जो कि टूट फूट सकती है। लेकिन जिसकी दृष्टि निर्मल हो गई है, जिसको वास्तविकता का बोध हो गया है, वो संसार के इन परिवर्तनों को बहुत अच्छे से जानता है। एक दिन चर्चा आई थी कि द्रव्य दृष्टि होनी चाहिए कि पर्याय दृष्टि होनी चाहिए, आज अपन वहां तक पहुंच गए हैं कि हमें पर्याय को पर्याय की दृष्टि से देखना चाहिए और द्रव्य को द्रव्य की दृष्टि से देखना चाहिए। दृष्टि तो वास्तविक यही है, दृष्टि की निर्मलता के मायने यही है कि मैं पर्याय को द्रव्य नहीं मानता हूं और द्रव्य को पर्याय की तरह नहीं देखता हूं, क्योंकि पर्याय हमेशा फ्राइबुल है, पर्याय हमेशा नष्ट होने वाली है, वो निरंतर परिवर्तनशील है। मैं बहुत छोटे से और युवा होता हूं और एक दिन वृद्ध हो जाता हूं और एक दिन मेरा मरण भी होता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं ज्यों का त्यों बना रहता हूं, जो मैं उस बालक में था वही मैं युवा में था, वही मैं अपनी वृद्धावस्था में, मरण के बाद भी मैं वही का वही, ये मेरी द्रव्य दृष्टि है। लेकिन निरंतर मैं परिवर्तित भी हुआ हूं और पर्याय परिवर्तित होती है ये मैं जान गया हूं, द्रव्य तो कांस्टेंट है वो ज्यों का त्यों, ये मेरी दृष्टि की निर्मलता है, ये मेरी द्रव्य दृष्टि और मेरी पर्याय को देखने की दृष्टि है। इस तरह अगर हम विचार करें तब कहलाएगा कि हां सचमुच हमारी दृष्टि निर्मल हो गई है। अभी तो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास। जरा सा विचार करना पड़ेगा कि दृष्टि निर्मल हो गई है तो अलग अलग तत्वों के बारे में निर्मल हुई कि नहीं। अभी तो मैं इस शरीर के उत्पन्न होने से, और सबसे पहले तो जीव द्रव्य के बारे में जरा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपन। क्या कहते हैं, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान करी करें देह में निज पिछान। कहीं मैं इस शरीर में ही, या इस शरीर को ही तो मैं नहीं मान रहा हूं, मैं इस शरीर को ही तो आत्मा नहीं मान रहा हूं। अगर ऐसा है तो फिर मुझे अपने आत्म स्वरूप के बारे में जरा भी विजन क्लियर नहीं हुआ है, जरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ आत्मा को लेकर के, और फिर शरीर को लेकर के भी कि तनुपजत अपनी उपज जान। ये अजीब तत्व के बारे में मेरी अपनी, मेरा अपना भ्रम है, मेरी अपनी भूल है। ये सब चीजें क्लियर कर लेना पड़ेंगी हमें, तब कहलाएगी दृष्टि निर्मल। महाराज पहले ही कह देते आप तो बहुत बुद्धू बना रहे हैं, शुरू में तो कहा था कि दृष्टि निर्मल करना तो हम तो बड़ा आसान समझ रहे थे, और यहां तक लाकर छोड़ दिया आपने, मुश्किल में डाल दिया। नहीं, मुश्किल में थे, अब आसान कर रहे हैं मुश्किल को। सच्चे देवगुरु शास्त्र अकेले के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने अकेले से कुछ काम नहीं होगा, उसके बाद जो है क्या क्या परिवर्तन मेरे भीतर घटित होना शुरू होंगे, जिनको मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जिनको मुझे खुद देखना पड़ेगा। ये परिवर्तन हो ही नहीं रहे मेरे भीतर, और मैं अपने को बहुत धार्मिक होने का लेवल लगा के बैठ जाता हूं सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में आकर के। मैं इसके बाद मेरे जीवन में कितने कितने ब्रॉड चेंजेस होंगे ये मैं देखता हूं कि जैनियों को इतना सब मालूम होने के बाद भी उनके भीतर कोई चेंजेस नहीं होते, लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं होते। बच्चन ने तो एक जगह लिखा है कि स्टाइल इज द मैन, अ मैन इज द स्टाइल। जैसा जीता है मालूम पड़ता है वैसा है, और जैसा है वैसे ही जीता है। हमारे जीने के तरीके से मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारी दृष्टि निर्मल हो गई कि नहीं हुई है। हम पजोका करने जाते हैं, दूसरा कोई मर जाता है तो उसके उसके पास रोने जाते हैं, उसको रुलाने जाते हैं कि रो तुम, तुम्हें याद आना चाहिए कि वो मर गया है, जो तुम्हारा, जिसको तुम कल तक अपना मानते थे। उसे हम ये समझाने नहीं जाते हैं कि मैं भी नहीं रोऊंगा और तुम भी नहीं रोना। जब रामकृष्ण के जीवन का अंत समय निकट था तो शारदा मां उदास हो गई थी, रोने रोने को थी, तो रामकृष्ण ने हंस के कहा कि सुनो, अगर इसको आप रामकृष्ण माना हो तो जरूर, तो निश्चिंत रहो वो इसके मरने के बाद भी ज्यों का त्यों रहेगा। श्रीमद रायचंद रास्ते से चले जाते थे, मुमुक्षु उनके साथ में चले जाते थे, और वे खेल खेल में उपदेश दे देते थे। रास्ते में एक कम्मा लेके आ रही थी, जैसे महाराज ने भी कहा कि छांच लेके आती थी, और छांच का घड़ा सिर पे रखे हुए थी और एक हाथ में पकड़ी थी छोटा सा घड़ा, पता लग रहा था कि उसमें नैनू होना चाहिए, उसमें घी होना चाहिए। उसे संभाल के पकड़े हाथ में, और उसको तो सिर पे रखे और हाथ से भी नहीं पकड़े, आराम से चली जा रही। रायचंद ने अपने मुमुक्षुओं से पूछा कि बताओ, अगर इसे धक्का लगे तो सबसे पहले जो सिर पे बड़ा रखा हुआ उसको बचाएगी कि ये जो हाथ में लिए उस छोटे को बचाएगी? सब थोड़े से चौंके कि कहना क्या चाह रहे हैं, तत्व का उपदेश देने वाला व्यक्ति और इस तरह की बहुत छोटी सी चीज पूछ रहा है, बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। तो उन्होंने कहा कि स्वामी, इसमें पूछने की क्या बात है, भले ही वो बड़ा घड़ा है, भले ही उसमें ज्यादा चीज भरी हुई है, पर धक्का लगने पर ये बचाएगी तो घी के घड़े को ही बचाएगी। तो उन्होंने कहा कि जब मृत्यु का धक्का लगे तब किसको बचाओगे, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, तुम इसको बचाओगे या इसके भीतर जो बैठा हुआ उसको बचाओगे? मृत्यु का धक्का लगने पर, ये तो इसको बाहर का धक्का लगा था तब इसने घी बचा लिया था, और जब हमें थोड़ी कोई आपत्ति विपत्ति आती है, मृत्यु का क्या, दूसरे का धक्का लग जाता तो किसको बचाते हैं, इसको बचाते हैं या कि इसको भीतर जो बैठा हुआ उसको बचाते हैं? बस यहां से मालूम पड़ता है कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास। कहीं इसके उत्पन्न होने में अपने को उत्पन्न होना और इसके नष्ट होने में अपने को नष्ट होना, ऐसा मेरा सोच तो नहीं है? अगर है तो फिर मुझे अपने सोच को बदलना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब मुझे यह मालूम पड़ जाना चाहिए, मुझे यह अनुभूति हो जाना चाहिए अपने भीतर से कि नहीं, इसके मरने के बाद भी मैं ज्यों का त्यों बचा रहता हूं। मैं बिल्कुल भी इसके मरने से प्रभावित नहीं होता, मेरी शाश्वतता और इसकी क्षण भंगुरता दोनों का मुझे बोध हो गया है। और रागादि प्रकट ये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। मुझे मालूम पड़ गया है कि ये राग द्वेष जो परिणाम में निरंतर करता रहता हूं, वो मेरे अपने नहीं है, मेरे ये वैभाविक, मेरे विकारी भाव हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इन राग द्वेष करने में ही अपना हित मानता हूं? जिनमें मुझे दुख मिलने वाला है, मैं इन्हीं को तो ठीक नहीं मानता हूं। और आप देखेंगे कि शायद हम इन्हीं को अच्छा मानते हैं। राग द्वेष को हम अच्छा नहीं मानते होते तो करते काय को? हम इतनी जोर से द्वेष करते हैं और भीतर भीतर इतने प्रसन्न होते हैं, घृणा करके प्रसन्न होते हैं कि इस आदमी को ठीक कर दूंगा मैं, और प्रसन्न हो रहे हैं। इसका मतलब मैं द्वेष में प्रसन्न हूं? नहीं, आप बताइए। राग और द्वेष में मैं अपना सुख अगर महसूस करता हूं, जबकि मुझे प्रकट में दिखाई पड़ता है कि रागादि प्रकट ये दुख देन, कहीं उन्हीं का सेवन तो नहीं कर रहा हूं? इसका मतलब है मेरी आश्रव तत्व के बारे में कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। जो भगवान ने सात तत्व कहे गए हैं, जो संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता है, उसका मुझे अभी ठीक ठीक भाव ख्याल भी नहीं है। कम से कम इतना तो कर लेते हैं, कभी जो है विचार भी करना चाहिए खाली समय में बैठ करके। अब शायद आपको लगने लगा होगा, इतने दिनों में तो लगने लगा होगा, कि थोड़ा सा समय अपने लिए तो निकालना चाहिए। 24 घंटे में 10 मिनट हमारे अपने निजी तो होना चाहिए, जिनमें हम शांति से घर के किसी कोने में सब आल जाल को छोड़ करके बैठ करके विचार तो कर सकें कि आज दिन भर में मैंने किया क्या है, सिवाय अपने जीवन को मिटाने के मैंने कुछ बनाने का प्रयास किया है या नहीं किया है, मैंने इन राग द्वेष परिणामों को अच्छा मान करके किया है या कि ये मुझे करने पड़े। अगर मैंने अच्छा मान के किया है तो इसका मतलब है कि मेरी दृष्टि अभी निर्मल नहीं हुई है, मुझे करने की मजबूरी है। क्या करूं? करने की मजबूरी समझते कैसी होती है, जरा सा क्लियर कर लें फिर आगे बढ़े। नहीं तो मैंने कह तो दिया कि करने की मजबूरी कैसी होती है, और आपको लगेगा कि नहीं, कई काम तो हमें मजबूरी में करना पड़ते हैं, पर समझ में नहीं आता कि ये मैं मजबूरी में किए या कि रुचि से किए, मैंने अपनी चॉइस से किए। कई बार हम चॉइस से करते हैं और कह देते हैं मजबूरी में किए। एक व्यक्ति धोबी के यहां से अपने कपड़े लेके लौटता है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये। जो व्यक्ति अध्यात्म पढ़ता होगा उसको तो ये उदाहरण बिल्कुल कंठस्थ होगा, और उसके अनुभव में भी अगर ये आ जाए तो उसका अध्यात्म का पढ़ना सार्थक हो जाएगा। ये आचार्य कुंद स्वामी का बहुत परफेक्ट दृष्टांत है। क्या कह रहे हैं वो, उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि एक धोबी के यहां से अपने कपड़े लेके लौट रहा है रास्ते में, और खुश हो रहा है कि मेरे कितने बढ़िया कपड़े हैं, वो उन्हें अपने मान करके खुश हो रहा है, और वो चाह रहा है कि लोग देखें कि मेरे कपड़े कितने अच्छे हैं। और अचानक धोबी के यहां दूसरा व्यक्ति पहुंचता है और अपने कपड़ों की मांग करता है, तो वो कहता है कि तुम्हारे कपड़े ये तो है, बोलता ये नहीं मेरे, तो कहां गए? अरे अरे अभी वो व्यक्ति आए थे, मैंने भूल से उनको तुम्हारे कपड़े दे दिए, तुम्हारे और उसके एक से ही जैसे लगते थे, और देखो ना इस पे ये कालर के पीछे निशान उसका ही लगा हुआ है, तुम्हारे निशान वाला कपड़ा तो वो ले गया, मैंने जरा गड़बड़ी कर दी। वो भागा भागा जाता है, मिल जाता वो रास्ते में, धीरे से जाके बाजू में से कहता है कि भैया जी, तो कहता क्यों, थोड़ा वापिस चलें धोबी के यहां। क्या बात हो गई? बात यह है कि वो जो कपड़े आप पहन के आ गए धोबी के यहां से, वो मेरे हैं। कैसे मेरे हैं? आपके मेरे ही हैं, मैं खुद अपने निशान देख के लाया। नहीं, आप एक बार फिर से निशान देख लीजिएगा। निशान देखता है तो हम, ये तो मेरे नहीं है, ये तो इसी व्यक्ति के हैं, ये कंफर्म हो जाता है। अब क्या करे, वो रास्ते में उतारेगा क्या? रास्ते में उतार के नहीं देख सकते, घर तक पहने रहने की अब मजबूरी है, अब मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है, कोई देख ना ले। पहले तो ये था कि सब देख ले, सब देख ले कि ये मेरे कपड़े और इतने सुंदर है और अब तो पहने जा रहा है कपड़े, लेकिन आग लग रहे हैं वो कि कब घर पहुंच जाऊं और कब इसके हैं ये उतार के दे दूं, कोई देख ना ले कि मैं दूसरे के कपड़े पहने। आपके समझ में आ गया मजबूरी किसे कहते हैं? ये हमारी मजबूरी होती है जब हमें परद्रव्य ऐसे ही सम्यक दृष्टि को, ये सब जो बाह्य चीजें हैं वो करना पड़ती हैं, पर छटपटाता रहता है कि मेरा स्वभाव तो नहीं है, मेरा अपराध अवश्य है, ये मेरी वास्तविकता नहीं है। तब जरा सा विचार करना कि मैं राग द्वेष परिणाम करके उसमें हर्ष तो नहीं मानता हूं, जबकि मैं जान गया हूं कि ये सिर्फ दुख देने वाले। और शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। जब शुभ कर्मों का मुझे फल मिलता है तो मैं हर्ष कर लेता हूं, और जब मेरे बुरे कर्म उदय में आते हैं तो मैं विषाद कर लेता हूं। और जिस तिस पर जो है अपने कर्मों के फल को, जिस तिस को जो कि निमित्त है उनको भी जो है मैं दोषी ठहराने की प्रवृत्ति वाला हो गया हूं, इसका मतलब है कि मुझे अभी बंध तत्व का स्वरूप ठीक नहीं मालूम। अरे मैंने जो अच्छे बांधे हैं उनका फल अच्छा ही तो मिलेगा, इसमें हर्ष करने की क्या आवश्यकता है, उसको भी शांति से भोग सकूं। और जो मैंने बुरे कर्म बांध लिए हैं, मेरी अज्ञानता से मैं कर्म बांधता हूं, अब मुझे ज्ञान हो गया है, तब फिर उनके उदय आने पर मैं विषाद क्यों करता हूं? मैंने किया विगत में जो पुण्य पाप, वो आ रहा उदय में स्वयमेव आप, होगा न बंध तबलो जबलो न राग, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग। मेरी दृष्टि इतनी निर्मल हो गई है कि अब मुझे इन शुभ अशुभ कर्मों के उदय आने पर हर्ष विषाद नहीं होता। देखिए मैं बात तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन मैं खुद भी समझते जा रहा हूं। आप ये मत समझना कि मुझे अभी शुभ अशुभ कर्म के उदय में हर्ष विषाद नहीं होता, मुझे भी होता है, लेकिन अपन बात करने बैठे हैं। आप बिल्कुल इस भ्रम में नहीं रहेगा कि मैं जो जो बातें कह रहा हूं वो सब मेरे भीतर एकदम क्लियर हो गई। हम सबको क्लियर करना है। आपको नहीं हुई है तो आप बिल्कुल विचलित मत होइए, व्यथित मत होइए कि आज तो ऐसी बात कह दी है कि क्या करें, हम कुछ समझ में नहीं आता। नहीं नहीं, ऐसे व्यथित और विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, हमको करना है, बस इतना पर तय कर लीजिएगा आज यहां बैठ करके कि हाँ सचमुच ये तो मैंने कभी सोचे नहीं था कि मुझे शुभ और अशुभ कर्मों का उदय आता है और मैं उसमें हर्ष विषाद कर लेता हूं, ये तो मेरी बहुत बड़ी गलती है। अब अगले बार जब शुभ कर्मों का उदय आएगा तब मैं ज्यादा हर्ष नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत करूंगा पर संभल जाऊंगा। जब अशुभ कर्म का उदय आएगा तो विषाद तो मुझे हुए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि बहुत अनादिकाल का संस्कार है, जल्दी से विषाद हो जाता है, पर अब थोड़ा सा जल्दी उस विषाद को समेट करके और नॉर्मल हो जाया करूंगा। इतना तो मैं कर ही सकता हूं, मैं कितने जल्दी अपने हर्ष और विषाद को नॉर्मल कर देता हूं, अंतर्मुहूर्त में कर देता हूं, या सुबह के शाम को ही कर देता हूं, या कि 15 दिन के भीतर भीतर तो मैं कर ही दूंगा, अपने विषाद को भी सामान्य कर दूंगा, अपने हर्ष को भी सामान्य कर दूंगा। 15 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर तो मेरी कषाय जो है वो अलग क्वालिटी की हो जाएगी, फिर तो मेरे संसार बढ़ाने वाली अनंतानुबंधी कषाय आ जाएगी, फिर तो मेरी दृष्टि बिल्कुल ही मलिन हो जाएगी। 15 दिन तक तो फिर भी ठीक है, मेरी दृष्टि मलिन नहीं हो पाएगी, ऐसा क्या हम विचार नहीं कर सकते हैं? तब क्या कह रहे हैं कि शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करें निज पद विसार। आत्म हित हेतु विराग, ज्ञान ते लखें आप खो कष्ट धान। अरे ऐसा तो नहीं कि जब कोई वीतरागी मेरे सामने वीतरागता की बात करता है तब मुझे कष्टप्रद मालूम पड़ने लगता है, मुझे त्याग तपस्या व्रत नियम कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कष्टप्रद मालूम पड़ते? जिनसे मेरा राग द्वेष कम होता है वो सारी बातें मुझे वीतरागता की कष्टप्रद तो नहीं मालूम पड़ती है, जो वीतराग विज्ञान है वो मुझे दुखदायी तो नहीं मालूम पड़ता है। अगर मुझे दुखदाई मालूम पड़ता है तो इसका मतलब है कि अभी मेरे भीतर संवर तत्व की भूल बैठी हुई है, अब मुझे भगवान के कहे गए संवर तत्व का ज्ञान नहीं है, क्योंकि जब तक मैं राग द्वेष को छोड़कर वीतरागी नहीं होऊंगा तब तक मैं इन लगातार होने वाले कर्म बंध और आश्रय की प्रक्रिया को रोक नहीं पाऊं, और चला तो मैं उसी रास्ते पर हूं कि मैं इन राग द्वेष और बंध की प्रक्रिया को और आश्रय की प्रक्रिया को रोक सकूं। मैं संवर कर नहीं तो चला था इस मोक्ष मार्ग पर, अपनी दृष्टि निर्मल होने से मेरे अंदर यह विचार आया था कि मैं अब इस राग द्वेष की परंपरा को जरूर तोड़ के रहूंगा, पर उसी वीतराग विज्ञान को मुझे कष्टप्रद तो नहीं मान लिया, और रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। बस इतने में दो तत्वों की भूल कह दी उन्होंने, इतने आसानी से दौलत राम जी ने, रोके न चाह निज शक्ति को, मैंने अपनी सारी ताकत अपनी इच्छाओं की पूर्ति में तो नहीं लगा दी है। अगर मैं सुबह से शाम तक सिर्फ अपने शरीर की इच्छाओं की और इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति करता हूं तो इसका मतलब है मेरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। हां, बहुत हिम्मत के साथ ये चीज अपने मन में बोल लेनी चाहिए कि सचमुच मैं तो अभी सिर्फ सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पर रखता हूं, पर मेरे भीतर अभी सच्ची दृष्टि आई नहीं। मैं तो सिर्फ बात बात करता हूं, अभी मेरे भीतर वो दृष्टि की निर्मलता नहीं आई है। आई होती तो मैं अपनी इच्छाओं को रोकना मैंने शुरू कर दिया होता, क्योंकि अगर मैं अपनी इच्छाओं को नहीं रोकूंगा तो मेरे अंदर कर्मों की निर्जरा के लिए कोई उपाय ही नहीं बन सकता। तपसा निर्जरा चा और इच्छा निरोधा तपा, तपस्या करने से ही निर्जरा होती है, और तपस्या के मायने है इच्छाओं का निरोध। बहुत सीधे सीधे सूत्र हैं, तब मैं अपनी इच्छाओं को रोकने वाला तप कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, तब मैं निर्जरा तत्व के बारे में ठीक ठीक समझता हूं कि नहीं, शिव रूप निराकुलता न जोए। और मोक्ष कोई बहुत अलग चीज नहीं है भैया, निराकुलता का नाम ही मोक्ष है। वो निराकुलता मेरे जीवन में आई है नहीं, मैं उसे अच्छा मानता हूं कि नहीं मानता हूं, या कि मैं 24 घंटे आकुलता में ही लगा रहता हूं और अपने आसपास भी आकुलता का वातावरण पैदा करता हूं और दूसरे को भी आकुल विकल करता रहता हूं, मैं आकुलता को अच्छा तो नहीं मानता हूं। मैं निराकुलता को अच्छा मानता हूं तो फिर ठीक है, उपाय मैं आकुलता के तो नहीं करता हूं, मैं उपाय तो निराकुलता के करूं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। निराकुलता को यदि मैं अच्छा मानता हूं और आकुलता को अच्छा नहीं मानता हूं तो आकुलता के उपायों से बचूं और निराकुलता का उपाय करूं। निराकुलता का उपाय तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा समय मेरा धर्म ध्यान में बीते। आर ध्यान और रौद्र ध्यान मेरे भीतर आकुलता का बहुत बड़ा कारण है, ऐसा मुझे विचार करना पड़ेगा। भैया, अपन थोड़ी सी समझने के लिए थोड़ी सी मुश्किल तो लगेगी, पर बहुत प्रैक्टिकेबल है। मैं कोई भी चीज कोशिश करता हूं कि जो प्रैक्टिकेबल नहीं है वो बिल्कुल नहीं कहूं, जो प्रयोग में नहीं आ सकती वो नहीं कहूं, मेरी कोशिश यही होती है। आप देखिएगा कि क्या ये प्रयोग में आने वाली चीजें नहीं है। बस थोड़ा सा अगर सावधानी हो तो इन सबको हम प्रयोग में ला सकते हैं। मान लो आकुलता के निमित्त जुट भी गए हैं तब हम कैसे निराकुल हों, इसका प्रयास तो कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आकुल विकल है तो उसको निराकुल बनाने का प्रयास तो कर सकते हैं, अपनी तरफ से उसको आकुलता तो नहीं उत्पन्न कराएं, इतना तो कर ही सकते हैं। आचार्य महाराज कहते थे, उनके उसी प्रवचन से मेरे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए थे। सन 1978 में नैनागिर में जब सात तत्वों पर प्रवचन हुआ था और अंतिम प्रवचन में उन्होंने कहा था कि जितनी जितनी निराकुलता जीवन में आती जाए उतना उतना मोक्ष आज भी संभव है। ये वाक्य मेरे जीवन में आज भी गूंजते हैं। चतुर्दशी का दिन था उस समय, और साथ में अंतिम तत्व मोक्ष तत्व पर आचार्य ऋषि का प्रवचन होना था, और तब उन्होंने कहा था, और वो मुझे उस समय मैं उतना नहीं कुछ समझता था, लेकिन इतना जरूर मुझे लगा कि बात ठीक कही जा रही है कि जितनी जितनी आकुलता कम हो जाएगी, कौन कहता है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, नहीं होता होगा पूर्ण तरह से मोक्ष, लेकिन मैं निराकुलता का स्वाद तो आज भी ले सकता हूं। मैं जितनी जितनी आकुलता कम करते चले जाऊंगा उतना उतना मैं मोक्ष की तरफ बढ़ते चला जाऊंगा। यहीं बैठे बैठे संसार में भी मैं मुक्ति का थोड़ा बहुत अनुभव तो कर सकता हूं उस निराकुलता को प्राप्त करके, लेकिन लगन तो होनी चाहिए, चाव तो होना चाहिए। तो भैया, आज अपन ने और थोड़ा सा अपने दृष्टि को रिफाइन किया है, दृष्टि को और थोड़ा सा बिल्कुल बहुत बारीकी के साथ उसको वॉश आउट करने का, जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कुछ भी हमारे मन में गलत फहमियां थी, भ्रम थे, उनको हमने आज और बहुत, मैं तो सोचता हूं कि आज अपन ने एकदम रिफाइन का बड़ा बारीक फिल्टर लगा दिया आज। हाँ, अगर इस इतना हमने रिफाइन कर लिया है तो जरूर से फिर तो देखना आपकी जो वास्तविकता है वो एकदम ऐसे, और फिर उसके बाद चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। जैसे ही वास्तविकता मालूम पड़ती, अच्छा ये बात है, आनंद आ गया। जब हमें अपने अपने उस आत्म स्वरूप का वास्तव में ज्ञान होगा तब वही ये सारे आनंद व्यर्थ हो जाएंगे। जितने अम्यूजमेंट की कोशिश हम करते हैं इकट्ठे करने की, वो उतने ही हमारे दुखी होने का पैमाना है। जितना व्यक्ति मनोरंजन की सामग्री इकट्ठी कर रहा है, इंटरटेन के लिए वो कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है वो भीतर से उतना ही दुखी है। और जिसके पास मनोरंजन के साधनों की जितनी कम जरूरत है, इसका मतलब है कि उसे आत्म आनंद और आत्म सुख प्राप्त होने लगा है। आज जो है भौतिक सुख इसलिए अच्छे मालूम पड़ रहे हैं क्योंकि आत्म सुख से हम उतने ही वंचित होते चले जा रहे हैं। कोई तो नहीं है जो हमें आत्म सुख दे सके, भौतिक सुख देने वाले जगह जगह हैं। आज हम अपने बेटे को भी भौतिक सुख सुविधा की सामग्री जुटा सकते हैं, लेकिन आत्म सुख का कोई उपाय नहीं बताते। मैं तो सोचता हूं कि हर पिता अगर अपने बेटे को अपनी तिजोरी के साथ साथ एक छोटी सी धर्म की किताब भी दे कि ये तो संसार का ताला खोलने की चाबी है जिससे तुम संसार में सफल होगे, ये चाबी ले लो तिजोरी की, लेकिन अगर भीतर का ताला कभी खोलने का मन हो तो ये छोटी सी किताब है, इसको पन्ने भी पलट लेना। मैं आपसे कल शाम को कह रहा था कि मुझे दादी से बहुत स्नेह था, और आपके मन में आया होगा कि ये अपने बारे में इतने मजे से कैसे कह रहे हैं, पर वो स्नेह किस तरह का था कल मैं सोचता रहा कि मुझे इस बात को क्लियर कर देना चाहिए। और वो स्नेह था, उनसे मुझे पैसे मिलते थे 10 पैसे, और किस बात के एवज में मिलते थे, उस समय उन 10 पैसों से प्रेम था, लेकिन आज भी मुझे उनकी स्मृति आने पर उनके प्रति स्नेह हो जाता है। उसमें और उसमें क्या फर्क था मैं ये बताना चाहता हूं। वे मेरे से एक काम करवाया करती थी हमेशा, भैया हमारी अलमारी को साफ कर है। हम कहते थे हम साफ करेंगे, क्योंकि हमें मालूम था कि 10 पैसे बहुत होते थे उन दिनों में, 5 पैसे में ढेर सारी चीज आती थी। आज तो फेंक देगा वो 10 पैसे, 1 रुपए से नीचे बात ही नहीं करता बेटा। और ठीक है, तो वो 10 पैसे बहुत कीमती हो जाते थे मुझे, और काय के लिए मिलते थे, हमारी अलमारी साफ कर दो। काय की अलमारी? किताबों की। उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, दादी को धर्म की किताबों की पूरी उनकी अलमारी फिक्स, वो हर 8 दिन में उसको साफ करवाती थी, मतलब किताबें ठीक ठाक करके उसमें रख दो, 10 पैसे हम देंगे। वो सामने बैठी रहती थी कि तुम गड़बड़ नहीं करो, नीचे मत गिरा। अब आज मुझे समझ में आता है कि उनके वे 10 पैसे और उनका अलमारी साफ करवाना, मेरे से झाड़ू भी लगवा सकती थी वो, 10 पैसे दे सकती थी, लेकिन झाड़ू नहीं, तुम किताबों की अलमारी ठीक कर दो। और ऐसा होता था कि हर बार ऐसा होता था कि उन किताबों के बीच में मुझे, पहले गुटका चलते थे ना गुटका छोटे छोटे, तो छोटी किताब का बड़ा शौक रहता है, तो वो छोटी, दादी ये हम ले लें, हाँ ले लो तुम्हारे लिए तो है ही, वो पता नहीं कहां से लाकर के छोटी छोटी किताब के गुटके रख देती थी हर बार, हर 10-15 दिन में, कि जब ये साफ करेगा तो इसको पसंद आएगी और ले लेगा, और इसने अगर ले ली और अपने बस्ते में रख ली या अपने किताबों में रख ली, मेरा काम हो गया। 10 पैसे का लालच तो बहुत बाहरी था, पता नहीं किस दिन ये प्रभु पतित पावन की बिनती उसी गुटके में से मुझे याद है कि धर्म ध्यान का गुटका छोटा सा चलता था, प्रभु पतित पावन की बिनती ऐसे ही फोकट में याद हो गई थी, फोकट में। आज हम अपने बच्चों को इस तरह से कुछ भी नहीं याद करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं इस तरह से दे पा रहे हैं, क्योंकि हमें ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि आत्म सुख भी कोई सुख हो सकता है। हम तो भौतिक सुख जुटा रहे हैं, और हमारे बच्चे भी अगर हम उनको भौतिक सुख कम जुटाएं तो शिकायत करते हैं कि बड़े बाह्यात किस्म के माता पिता मिले। हाँ, बच्चे कहते हैं क्या कर लिया आपने हमारे लिए, कोई भी सुख सुविधा नहीं थी, पढ़ते समय जो है एक गाड़ी तक का इंतजाम नहीं कर पाए थे आप, बाद में बड़े होने पर इस तरह का उलाहना देते हैं वे बेटे, क्यों देते हैं? क्योंकि हमने कभी स्वयं आत्म सुख स्वयं पाने की कोशिश नहीं की और उनको भी आत्म सुख का एहसास नहीं करवाया। भैया आज तो मुझे लगता है कि हमने एक ही बात सीखी कि अब भौतिक सुख मुझे अच्छे नहीं मालूम पड़ना चाहिए। आज जब हम यहां से बाहर निकलेंगे और शाम तक अपने जीवन में बहुत गौर से देखेंगे कि सचमुच मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं, बिल्कुल भी मेरे कहने से नहीं, सुबह से शाम तक सिर्फ अपने भीतर से कोई आवाज उठने का आप इंतजार करिएगा कि आपके भीतर से कोई आवाज उठने लगे कि सचमुच अब मुझे नहीं चाहिए, जो मिले हैं वो ठीक है उनको एंटरटेन करूंगा लेकिन मैं उसके लिए अपनी अपनी जिंदगी में अब नष्ट नहीं करूंगा, भौतिक सुखों के पीछे उस दौड़ में मैं शामिल नहीं होऊंगा, मैं जितना है मुझे उतने में संतोष करूंगा। अगर इतना मैंने कर लिया तो मैं सोचता हूं कि आज ही हमारा काम पूरा हो गया। मेरे ख्याल से हमारी दृष्टि निर्मल हो गई। हम और जो लोग बहुत सारी मूर्ताएं हैं उनके बारे में तो फिर कभी समझेंगे। आज तो मैं सोच तो यही रहा था कि मैं कुछ थोड़ी सी मूर्ताओं को भी विचार करूंगा कि मैं अपनी उन मूर्ताओं को, उन अविवेक को हटा दूं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी उसके लिए और मुझे थोड़ा सा अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। अभी तो सबसे बड़ी मूर्खता मेरी ये है कि मैं भौतिक सुखों को सच्चा सुख मान के बैठा था, मैं अपने आत्म सुख को भूला था। आज मुझे मालूम पड़ गया है कि नहीं, अब मुझे आत्म सुख भी प्राप्त करने की कोशिश करनी है, इसी भावना के साथ कि हम सब जो है अपनी दृष्टि को निर्मल बनाएं और जो हमें आत्म सुख पाने में मजा आना चाहिए वो हम जरूर अब लेने की कोशिश करेंगे। इसी भावना के साथ आज मैंने आपका समय जो है वो 10 मिनट अतिरिक्त दिया, उसके लिए जो है एक्सक्यूज करिएगा। मैं बहुत ध्यान रखता हूँ पर फिर भी आज चूंकि विषय ऐसा आ गया था इसलिए मुझे लेना पड़ा, आप समझ रहे हैं उस चीज़ को, इसलिए आप एक्सक्यूज करेंगे मुझे कि मैं 10 मिनट, मैंने 9:15 हुआ। फिर अपन कोशिश करेंगे कि फिर अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। इसी भावना के साथ आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि महाराज।